ஓம் தியாய நித்யம் மகேசம் ரஜத கிரிநிபம் சாரு சந்திராவதம்சம் ரத்ன கல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகபரா வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதம் அமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வபந்தியம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்யசிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திக காரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேயஹ ப்ராப்தி நிமித்தாய நமஹ ஸோமார்த தாரிணே ஓம் சாந்திஹி சாந்திஹி சாந்திஹி. சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷ மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷ மாம் சந்திரசேகர 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 पाहि माम चंद्रशेखर चंद्र चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम ओम 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 प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर प्रवचन चल रहा है। अभ्यास के लिए 87वां श्लोक 87 असनम गरलम फणीकलापो वसनम चर्म च वाहनम महोक्ष मम दास्यसि किम् किमस्ति संभो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि यदा कृताम्भो निदिशे दुवंदन करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानि ते लंघित पद्म संभवस् तदा शिवार्चास् तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिस्त्वमीश पूजा विधिभिर्ध्यान समाधिभिर्न तुष्ट धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शंभो अहमुद्योगविदा सुते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि असनं गरलं फणीकलापो వసనం చర్మ చ వాహనం మోక్ష మమ దాస్యసి కిం కిమస్తి సంభో తవ పాదాంబుజ భక్తిమేవ దేహి శివానంద లహరి మే బహుత్ సే అన్మోల్ రత్న హై. उन रत्नों में से एक ये भी है, ये श्लोक भी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. एको बारी जबान दवा छिरी नभो व्याप्तम तमो मंडलम, बड़ा ही सुंदर श्लोक है. ऐसे ऐसे बहुत से श्लोक है जो साधक शिव भक्त नित्य निरंतर गुनगुनाते रह सकते हैं, रहना चाहिए. भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा भगवान शिव से कह रहे हैं मानो कि महाराज, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, और उस भक्ति की बदौलत संसार में बहुत कुछ पाने की आशा नहीं रख सकता. संसारी लोग आशा करते हैं, लेकिन मैं उन संसारियों में से नहीं हूं जो आपकी भक्ति की बदौलत कुछ पाना चाहते हैं. कुछ विरोधाभासी श्लोक हैं इसमें, इस स्तोत्र में. पहले तो कहा कि महाराज, आप अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकते. बहुत कुछ दे सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए. किसी चीज की कमी नहीं है. शायद इसी आशा से सभी लोग आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं. अब इस श्लोक से शंकराचार्य जी कहते हैं, आपके पास देने के लिए है ही क्या? कुछ भी नहीं है. आपकी भक्ति करके लोगों को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा. कुछ हो तब न मिले. ये विरोधाभासी श्लोक हैं. इससे पहले जो श्लोक है 27वां श्लोक, उसमें कुछ ऐसे भाव व्यक्त किया है कि आपके पास बहुत कुछ है. करस्थे हे माद्रव 27 उसमें नहीं है. मैं आपको बता, ये शिवानंद लहरी कही है. वो तो 3 साल पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है, कैसेट सुन लेना. करस्थे हे माद्रव गिरीशा, संबोधन है गिरीशा. हे गिरीशा, करस्थे हे माद्रव, निकटस्थे धनपतौ है. सोने का पहाड़ तो आपके हाथों में ही है. హిమాద్ర హిమ మన సువర్ణ तो सोने का हिमाल देखने की इच्छा हो तो नेपाल आ जाओ ना। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ना। अब अक्टूबर के बाद फरवरी मार्च तक सुबह और शाम दोनों टाइम आपको सोने का हिमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह जो सनराइज होता है तो सूर्य का जब प्रथम किरण उस हिमालय में पड़ता है, सफेद हिमालय में नवोदित भगवान सूर्य का जब किरण पड़ता है तो ऐसा लगता है कि ये पूरे के पूरे सोने का पहाड़ खड़ा है, बड़ा ही मोहक होता है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर आते जाते हैं तो वह हिमाल फिर चांदी में बदल जाता है। रजतगिरि निभम चारुचंद्रावतंसम, बाद में रजतगिरि हो जाता है, पहले हेमाद्री सोने का होता है, बाद में फिर चांदी का होता है, दिन भर चांदी का रहता है। जब शाम को सूर्य अस्ताचल को जाने लगते हैं, सनसेट, उसके अंतिम किरण फिर वो हिमालय में पड़ते हैं, फिर सोने का हो जाता है, वो बिल्कुल गोल्डन सुवर्णमय, क्या मोहक हो जाता है और पूरी तरह सूर्यास्त हो जाने के बाद वह फिर हिमालय लोहे के रूप में बदल जाता है। रात भर अंधकार के अंदर ढका रहता है, दिन भर चांदी, रात भर लोहा, लेकिन बीच में 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के लिए शाम को, खाली 10 मिनट भी नहीं, 10 मान लो 10-12 मिनट के लिए बिल्कुल गोल्डन है, इतना क्या मोहक हो जाता है। आपको फ्री दिखा देंगे, आप आइए। उस बात को शंकराचार्य जी संकेत कर रहा है, आश्रम के तरफ से आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, हर चीज की सुविधा वहां मिलेगी। अब आप अपने आप से दुखी हो जाएं तो भगवान जाने, आप अपने घुटनों से दुखी हो, अपने कमर से दुखी हो, अपने पेट से दुखी हो, अपने सिर से दुखी हो, तो उसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, है ना? बाकी जो व्यवस्था की दृष्टि से आपको गर्म पानी मिलेगा, है, टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरे मिलेंगे, है, भोजन बढ़िया मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्जी वेजिटेबल फूड सब ऑर्गेनिक मिलेगा, और बढ़िया हवा पानी, बापा, चारों तरफ रुद्राक्ष का जंगल है, 500 पेड़ हैं रुद्राक्ष के, क्या शिवमय रुद्रवन है, रुद्रवन उसके बीच में आश्रम है, न कुत्ते हैं न कुक्कुड़ हैं वहां, है? क्योंकि चोटी पर खाली आश्रम ही है, कोई बस्ती है ही नहीं आसपास में, बस्ती न होने से न मुर्गे हैं न कुत्ते हैं, पक्षी कलरव क्या, कोयल है, बढ़िया सुंदर है। प्रसंग क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं, करस्थे हे माद्रव, सोने का पहाड़ तो आपके हाथ में है, और निकटस्थे धनपतव, कुबेर तो आपके नजदीक हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो आप क्या नहीं दे सकते भक्तों को, बोलो। इसीलिए सारी दुनिया आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि आप सबको देते हो, लुटाते हो। गृहस्थे स्वरभूजाम अमर सुर भी ही, स्वरभूजाम अमर सुर भी भूजा, भू जा स्वर भूजा, स्वर्ग का वृक्ष, भू माने पृथ्वी, भू से उत्पन्न हुए कौन? वृक्ष। तो वृक्ष का नाम क्या है? भूजा, भू तस्मात जात इति भूजा। कौन सा वृक्ष? स्वर भूजा, कल्प वृक्ष तो आपके घर में ही है, क्या कमी है उनके पास? जिसके आंगन में गृहस्थे, घर के आंगन में ही कल्प वृक्ष खड़ा हो, तो दुनिया को क्या नहीं दे सकता है वो, बोलो। उसके पास किस चीज की कमी रहेगी? गृहस्थे स्वरभूजाम अमर सुर भी ही, और देवताओं की गाय अमर सुर भी, देवताओं की गाय, देवताओं की गाय का मतलब कामधेनु जी, अमर सुर भी, और साथ ही चिंतामणि गणे, जो चिंतन करो वो उपस्थित हो जाए। चिंतामणि चिंतामणि का तो आपके खड़ा हूं है, बोलो। अब क्या नहीं दे सकते आप, बोलिए। शिरस्ते सीतांसौ, देख लो, अमृत तो आपके मस्तक में ही पड़ा हुआ है। चरण युगल थे अखिल शुभे, संसार में जितने भी शुभ और मंगलमय वो सब के सब आपके चरण में बैठे हैं। जब ये सारी चीज संपदा आपके पास है, तो आप दुनिया को देने में कंजूस क्यों करते हो? इसीलिए तो आपको आशुतोष कहा, इसीलिए तो आपको दुनियाओं ने अवघण दानी कहा। और ये सारी चीज कुछ घटने वाला नहीं जितने बांटोगे आप। कमर्थम दास्य हम भवतु, फिर मैं आपको ऐसा कौन सा वस्तु दूं? कम अर्थम अहम दास्य, हां एक चीज हमने पता लगाई है जो आपके पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। एक एक चीज हमने पता लगाई है कि जो आपके पास है नहीं, सिर्फ मेरे पास है। वो क्या चीज है? भगवान शिव के पास यानी परमात्मा के पास मना उपाधि नहीं है। तुम लोग वेदांती हो ना, समझ गए ना? भगवान के पास अंतःकरण उपाधि तो है ही नहीं। कार्य उपाधि रयम जीव, कारण उपाधि ईश्वर। कार्य उपाधि वाला जीव होता है, कारण उपाधि वाला ईश्वर होता है। कारण माया, कार्य अंतकरण। अब भगवान के पास मन है, बोलो। कार्य उपाधि नहीं है तो क्या मन कहां से आएगा उनके पास? इसीलिए तुमको मन ही तुमको दुख देता है और शिवजी को दुख देने वाला तत्व तो है ही नहीं उनके पास। दुख देने वाला तत्व उनके पास है ही नहीं, तो इसीलिए तो मस्त है वो। और दुख देने वाला तत्व तुम्हारे पास है, इसलिए तुम हम जीवात्मा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो भगवान शिव आपके पास एक चीज नहीं है, तो मैं चाहता हूं जो सिर्फ मेरे पास है, और मैं चाहता हूं कि वही आपको अर्पण करूं। कमर्थम दासे हम भवतुम भवत अर्थम मम मना। आपके लिए तो मैं अपना ही मन ही दे सकता हूं, और मेरा मन मुझे हैरान करता है, आप संभाल लो, चलो आप रख लो। है सब कुछ है तो एक मन नहीं है तो ये अधूरा क्यों? सब कुछ है तो मन भी ले लो, मेरा मन भी ले लो। अब इस तरह भगवान शिव के पास सब कुछ है भक्तों को देने के लिए, कोई चीज की कमी नहीं, दिव्याति दिव्य है। अब यहां आकर शंकराचार्य जी कहते हैं, मुझे देने के लिए, भक्तों को देने के लिए आपके पास है ही क्या चीज है? ये पागल है, ये मूर्ख लोग हैं जो कि आपके हमेशा रात दिन भक्ति करते हैं। असनम गरलम, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलोग, गाता भी मैं, गुनगुनाता भी हूं। क्या एक गीत था ना पुराना, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं। हंसने की बाधा किया इसलिए सदा मुस्कुराता हूं। तो मैं गुनगुनाता हूं इसलिए।
असनम गरलम फणीकलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष। असनम गरलम फणीकलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष। मम दास्यसि किम् किमस्ति शम्भो, मम दास्यसि किम् किमस्ति शम्भो, तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि।
आपके पास क्या है मुझे देने के लिए, बोलो? कुछ भी नहीं है। और देने वाला व्यक्ति वही देता है जो अपने पास है। जो अपने पास नहीं है वो कहां से लाकर देगा? हम लोग पहले, आप लोग भी ट्रेन की यात्रा तो खूब करते रहे होंगे, ट्रेन जर्नी करते रहे, और हम भी ट्रेन जर्नी करते थे पहले। हरिद्वार से जब काशी पढ़ने के लिए जाते थे, पूरी ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ती थी, दिन भर रात भर की यात्रा करो फिर पहुंचो। बम्बई से दिल्ली जाना पड़ता था, 24 घंटे की यात्रा होती थी पहले, अभी राजधानी से 17-18 घंटे में पहुंचने लग गए। इधर 22-23 घंटा, 24 घंटे से पहले कोई ट्रेन नहीं पहुंचती थी। तो पूरी बंदोबस्ती के साथ ट्रेन में चढ़नी पड़ती थी, अपना बिस्तरा लेके जाओ और अपने भोजन पानी अपने ही लेके जाओ। जब दोपहर को खाने का समय होता था तो अपने पास जो भोजन, कोई करेले की सब्जी और पूरी रखता था, परौंठा रखता था, अक्सर करेले की सब्जी, क्योंकि वो खराब नहीं होती है ना ओवरनाइट, फ्राई करके रख ली, या फिर भिंडी फ्राई करके रख ली, या परवल फ्राई करके रख ली, और आलू रखा तो गर्मी में सुबह तक, पहले तो एयर कंडीशन थे नहीं ट्रेन में, खराब हो जाता था, खाने लायक नहीं होता था, शाम को तो खा लिया और सुबह फिर क्या करोगे, आलू तो खराब होता था। जब शाम को खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाए, फिर सुबह खाना खाने के लिए बैठे, तब किसी स्टेशन में जब गाड़ी खड़ी होती थी तो फिर डब्बा खोल के खाने लगे। कोई परौंठा निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास परौंठा है, कोई पूरी निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास पूरी है, कोई चिवड़ा निकाल कर खा रहा है क्योंकि उसके पास चिवड़ा है, कोई ब्रेड टोस्ट निकाल के खा रहा है उसके पास वही है। तो मांगने वाले तो डब्बे के प्लेटफार्म में डब्बे के पास आके खड़े हो जाते थे, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो, बाबू हैरान करते थे। हैं? इलाहाबाद माने हर आबाद में ये है, हर आबाद, जहां आबादी है सब जगह यही बर्बादी है, सब आबाद में ऐसा ही होता था, दे दो बाबू दे दो दे दो। तो कई बार खिड़की बंद करनी पड़ती थी, है खाने न देवे, और कदाचित तुमने दया करके एक को एक टुकड़ा दे दिया, वो और लोगों ने देखा तो भीड़, ये देने वाला है ये, तो वो गया एक रोटी लेकर, तो फिर आ गए 50-10 आ जाएंगे, दे दो बाबा दे दे बाबा, हैरान पड़ते थे, देने पड़ता था। वो क्या, जो खाने बैठे वही ना देंगे, परौंठा खाने बैठा है तो परौंठा देगा, पूरी कहां से देगा उसको, पूरी खाने बैठा है तो पूरी देगा, परौंठा कहां से देगा। अब कोई बिहारी होगा सत्तू खाने बैठा होगा तो सत्तू ही देगा, चूड़ा खाने बैठा हो तो चूड़ा देगा। भगवान का भोजन क्या है? शिव जी क्या खाने बैठते हैं? तो भगवान का भोजन तो असनम गरलम। महाराज आपका भोजन तो विष है, जहर है, गरल है। अब आप प्रसन्न होकर खाते खाते अपने थाली से प्रसाद थोड़ा सा दोगे तो क्या प्रसाद दोगे आप? अमृत। अपने आप खाएंगे जहर तो भक्तों को अमृत देंगे?
तुम्हारे पास देने के लिए है क्या चीज? वही जहर ही तो बांट रहे हो। और संसारी लोग तो भगवान से भी वही जहर ही मांगते हैं, है ना? विषय मांगते हैं ना, विषय मांगते हैं कि नहीं? तो मैं हमेशा ये व्याख्या किया करता हूं, विषय, विषय माने पदार्थ, धन संपत्ति दौलत पैसा आदि, है ना? इसको वेदांत में क्या बोलते हैं? विषय। अब विष लिखो और विषय लिखो तो क्या फर्क है? तो विषय लिखने के लिए पहले विष लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद य जोड़ दो, तो ऑलरेडी तुमने विष तो पहले लिखी कि नहीं है? बोलो ना, व ई अनि मूर्धन्य ष, वो तालवे सा भी नहीं है, दंते सा भी नहीं है, मूर्धन्य ष है ना? पा लेकर पेट चीरो तो क्या हो गया? स ऋषि वाला सा। विषमा भी वही लिखना होगा और विषय में भी वही लिखना होगा। तो पहले विष लिखो उसके बाद ये जोड़ो तो क्या हुआ? विषय। तुमने भगवान से कहा महाराज मुझे विषय दे दो, तो विषय य बोलने से पहले विष बोला कि नहीं? बोलो, हैं? यह तो बाद में बोला, पहले क्या मांगा? विष मांगा, उसके बाद यह कहा। तो भगवान के पास तो वही ना है, तो वही दे देंगे, वो विष ही देंगे, क्योंकि वही खाने के लिए बैठे थे। वही ले, ए जा उधर जा, ए ले जा, जा बम्बई बैठ, जा कलकत्ते, जा दिल्ली, जाए लंदन, जाए अमेरिका। इसीलिए तो भगवान से जो विषय प्राप्त करते हैं कोई अमर हुआ है? बोलो, विषय मांगने वाला कोई अमर हुआ है? तो विषय सेवन करने वाला विषय सेवन करने वाला है। तो उससे महाराज मेरा क्या होने वाला है? ये तो अनेक जन्म में वही सेवन करता हुआ आया हूं, एक जन्म में क्या, हजारों लाखों करोड़ों जन्म, जन्म जन्म से मैं वही तो सेवन करता आया हूं, क्या विषय? और आप भी वही सेवन कर रहे हो, हम भी वही सेवन करते आए हैं, और आश्चर्य यह है कि आप उसके सेवन करते हुए भी नहीं मरते हो, और हम उसके सेवन कर करके मर मर के हैरान हो गए, अब नहीं चाहिए हमको। असनम गरलम, मैं इसकी व्याख्या बड़ी मस्ती से किया करता हूं। फणी कलाप कलाप माने माला, फणी गले में आपका जो हार है माला है वो क्या है? वो तो फणी सर पर। कहते हैं शादी के बहुत वर्षों तक बच्चे नहीं हुए दशरथ के। सुना है ना कहानी? है कई वर्षों तक, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादी करने पर भी बहुत वर्षों तक बच्चे नहीं हुए। दशरथ बड़ा दुखी हुए। उनको तब तक तो कोई चिंता नहीं हुई जब तक एक दिन पितरों को तर्पण देते समय में, पिंड देते समय में, उनके पिता अज राजा अज खुद आकर उपस्थित होकर रोते हुए उनके हाथ का पिंड खाया। और समय में वो रोते नहीं थे, बड़े खुशी से खाते थे। उस दिन वो रोते हुए खाने लगे। रामायण में स्पष्ट लिखा है। दशरथ ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, जब मैं वार्षिक श्राद्ध करता था और आपको आह्वान करता था पिंड बनाकर खीर का, गाय के दूध के खीर का पिंड बनाकर आपको जब देता था हाथ से, आप मेरे हाथ से बड़े खुशी से प्रसन्न से उसको ग्रहण करके जाते थे, मुझे खूब आशीर्वाद देते थे, और आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब ठीक ठाक चल रहा था, ये आज क्या हुआ? आज तिथि थी आपकी, मैंने श्राद्ध आरंभ किया और ये पिंड बनाकर दिया, आप आए, आह्वान की मैंने, आप आए, पिंड तो लिया, लेकिन ये रो क्यों रहे हो, रोते हुए क्यों ग्रहण किया? पित्री आज ने कहा दशरथ को, बेटा रोने का कारण यह है, इस तरह तुम श्रद्धा से हमको हर साल याद करते हो और आह्वान करते हो, बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्राद्ध करते हो, इस श्रद्धा का भाव ही श्राद्ध है, श्राद्ध और कुछ नहीं है। पितरों के प्रति जो आपका श्रद्धा भाव है उसी का नाम श्राद्ध। लेकिन ये क्रम जब तक तुम जिंदे रहोगे तब तक तो तुम निर्वाह करोगे और हमें इसी तरह तृप्त करते रहोगे, लेकिन जब तुम मर के जाओगे तो हमको तृप्त कौन करेगा? क्यों महाराज? बोले क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो है ही नहीं, मरने के, तुम्हारे मरने के बाद आगे हमें पिंड पानी कौन देगा, हमको तृप्ति कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो है ही नहीं। तो इस चिंता से हम दुखी हैं, तो हमारे रोने का कारण यही है। जब राजा दशरथ को पता चला कि अरे संतति न होने की समस्या तो केवल हमको नहीं, हमारे पितरों को भी है, देवताओं को भी समस्या है, आगे नित्य निरंतर देव भाग कौन देगा, यज्ञ कौन करेगा तुम्हारे मरने के बाद? आज तो चले गए। अब राजा दशरथ को चिंता हुई, तुरंत गुरु वशिष्ठ के यहां गए और सारी घटना सुनाई। गुरुदेव इसका समाधान होना ही चाहिए, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, शास्त्र में कोई विधि है कि नहीं काम्य कर्मों का? वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज वेद 80% तो काम्य कर्मों से ही भरा हुआ है, सारा वेद काम्य कर्म का ही प्रतिपादन में लगा हुआ है। तो यदि ऐसा है और सत्य है तो मुझे पुत्र चाहिए, जो अनुष्ठान करना है जैसा करना है यह आपकी जिम्मेवारी। वशिष्ठ जी ने कहा वेद में पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान है, विधिपूर्वक वो यज्ञ करेंगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। बोले करिए फिर। बोले मैं अकेले नहीं कर सकता, श्रृंगी ऋषि इसमें बहुत पारंगत हैं, शांता भारिया, शांता पुत्र, श्रृंगी ऋषि शांता, तो वो श्रृंगी ऋषि, उनको लेके आओ, बुलाओ, और वो आ जाए तो पुत्रेष्टि यज्ञ निर्विघ्न हो सकता है और तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। राजा ने कहा कि वो हम कहते हैं करेंगे। शांता भर्तारम तो गए, दशरथ और श्रृंगी ऋषि को बुला लिया और राजी हो गए, आ गए। और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ देवता अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और आपने प्रसंग तो सुनाई है। सुवर्णमय पात्र में खीर लेकर प्रकट हो गए और वशिष्ठ को कहा कि तुम अपने जजमान को दो और जजमान पत्नी ये खाएं तो अभिष्ट फल प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो पायस लिया और अपने रानियों को बुलाया तो संयोग से उस समय दो ही रानी वहां उपस्थित थी। ये तो आप लोगों ने रामायण के प्रसंग में सुनाई है, कौशल्या और कैकेयी दोनों वहां उपस्थित थी। राजा ने दिया कि लो खाओ तो दोनों ने आधा आधा बांट लिए। इतने में सुमित्रा आ गई। क्या कह रही हो बहनों? बोले ये यज्ञ प्रसाद है, फिर मेरा भाग कहां है? अरे तुम थी नहीं, हम दोनों खाने के लगे, अब तुम आ गई हो, लो 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 आधा तुम लो। तो उसने भी आधा दिया, उसने भी आधा दिया, तो सुमित्रा को दो भाग हो गए। तीनों रानियों ने उपाय खाई। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। राजमहल में पहुंचे तो धीरे धीरे रानियों का लक्षण देखा, राजा बड़े खुश हो गए। 9 महीना पूरा हुआ, 10वें महीना में कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया। और जैसे कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया, ये खबर सुनाने के लिए कौशल्या की सेविका दासी राजमहल में प्रवेश करके महाराजा को संबोधन करते हुए, जय हो महाराज धीराज की, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। बोले आज क्या खबर लाई हो? महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, कौशल्या ने पुत्र जन्मा है। वाह क्या कहना, बड़े खुश होगा। और दशरथ ने जो पहन रखा था बढ़िया माला गले में, पहाड़ से माला उतार के और दे दी, अले बेटे इतना बढ़िया समाचार, शुभ समाचार आज तक मुझे किसी ने नहीं सुनाया था, सबसे पहले सुनाने वाली तुम हो, लो जाओ। निकाला और दे दिया। दशरथ ने जो माला दी है उस माला से उस दासी का तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। बोलते हो ना नौलखा माला, गीत गाते हो कि नहीं तुम लोग? और दशरथ का माला के नौलख का रहा होगा, करोड़ों का अरबों का होगा। और उस माले से तो उस दासी का तो कल्याण हो गया। अब इसी तरह हे शिवा प्रसन्न होकर खड़े हो जाएं और मुझे अपने गले का माला निकाल कर दोगे तो मेरा क्या हाल होगा? प्रसन्न समझ में आया कि नहीं आपको? शंकराचार्य जी कह रहे वही
असनम गरलम फणी कलापो।
आप खुश होकर आपके गले के माला निकालकर मुझे दोगे तो वो तो सर्प का माला था, वो मेरा क्या होगा?
वसनम चर्मच
तीसरा उदाहरण दिए, आप पहनते क्या हो? चर्म है ना? दंतित्वकृत सुंदराम भरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः। वसनम चर्म, अब कपड़ा तो पहनते हो, चमड़ी का, हाथी का चमड़ा, बाघ का चमड़ा। अब आप बड़े खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने कपड़ा निकालकर दोगे तो उससे मेरा क्या होगा भाई? उससे मेरा क्या होगा? आपके कपड़े मेरे किस काम के? बोलो। व्यक्ति वही तो होता है, प्रसन्न होता है तो अपने कपड़े दे देता है। हमारे एक भक्त थे, अभी भी हैं बेचारे, बहुत वृद्ध हो गए। इलाहाबाद कुंभ मेले में गए, जनवरी का महीना, बड़ी ठंडी, मकर संक्रांति को पहला स्नान, 14 जनवरी 13 जनवरी। सुबह सुबह गंगा जी नहाने गए, नहाने के आते समय में बड़ी ठंडी लगी थी, तो वो स्वेटर पहना था, मोजे पहने थे, उसके बाद टोपी लगाया था, गलबंदी बांधा था। तो वहां देखा, उस गंगा के किनारे कुछ यात्री ऐसे ही ठंडियों में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे। उनको देखा, बड़ी दया आ गई उनको, तो बढ़िया शॉल था उनके ऊपर, पार्ट से उतारा और उसको दे दिया। दूसरा देखे तो वो भी कांप रहा था, टोपी निकाला उसको दे दिया। तीसरा देखते वो कांप रहा है, गलबंदी निकाली उसको दे दिया। चौथा देखा वो कांप रहा है, स्वेटर निकाली उसको दे दिया। और तो सभी लोग घाट में ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, उनको दया आ गई बिचारी बिचारे को। और कैंप में आते आते तो खाली एक कच्चा और बनिया। क्या हुआ? बोले अब क्या करें, घाट नहाने गया, सब दुखी हैं, कांप रहे हैं बेचारे ऐसे ठंडी में। वो भी मांगता है, वो भी मांगता है, वो भी मांगता है, सब दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि कैंप में और सेट थे, आए फिर फटाफट पहन ली। अब ऐसा व्यक्ति बाहर निकलेगा तो लुटाएगा ही। तो हे शिवा, आप भी इसी तरह दयालु हो जाओ और अपने जो कपड़े उतार उतार के देने लग जाओ। आपको दिगंबर होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपके कपड़ा मैं प्राप्त करके मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बोलो। और कदाचित आपके कपड़े मैं पहनूं और जाऊं और तुरंत बारिश हुआ और भीज गया तो वो कपड़ा किस काम का भाई? वो कपड़े को तो भीजा हुआ, शिवजी का दिया हुआ कपड़ा यदि भीज गया तो कुत्तों को, गिद्धों को, कागों को काम आ जाए, है ना? हमारा किस काम का भाई? क्यों, चमड़े में पानी पड़ते तो सड़ जाएगा, सड़ेगा तो काग गिद्ध तो खा ले, हमारे तो काम का नहीं महाराज।
असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्मच वाहनम महोक्ष।
अब आपके जो सवारी करने का जो वाहन है वो तो बैल है, वाहन मोक्ष। कहते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में था, तो गांव में वो साइकिल रखा करता था और साइकिल से आता जाता था। और धीरे धीरे काम करने के लिए वो बम्बई आ गया, और ये सोचकर कि बम्बई में भी साइकिल काम आ जाएगा, तो वही साइकिल चढ़ के इधर से उधर, उधर से उधर घुमा करता था। भगवान की बड़ी कृपा हुई, खूब संपत्ति कमा लिया, अब तो गाड़ी रखने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन, बहुत गाड़ियां हो गई, बड़ा बंगला हो गया। लेकिन वो साइकिल कोने में रखी हुई थी उसकी, और गाड़ी रखी तो ड्राइवर रखा था, एक समय की बात है कि वो ड्राइवर कहीं दूर रहता था झोपड़ी में, और जाता था और चलाता था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यातायात हड़ताल हो गया, यानी परसों हो गया था, टैक्सी ऑटो तो आ नहीं पाया, दो दिन तक ड्राइवर आ नहीं पाया, तो सेठ को कहीं जाना था, जा नहीं पाया। क्या हुआ? बोले महाराज हम कैसे आए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यातायात, सार्वजनिक यातायात हड़ताल हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हम कैसे आते, पैदल आना संभव था नहीं। बोले साइकिल में आता? बोले महाराज हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे तुरंत तो उस सेठ को याद आ गया, भाई अरे वो गैरेज में मेरी पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, ले जा। समझे कि नहीं? क्या नया ये? होंडा सिटी देगा वो सेठ? अभी अभी खरीद के लाया था, वो देगा क्या उस ड्राइवर को? वो गैरेज में पड़ी है पुरानी मेरी साइकिल, वो ले जा, मरम्मत होकर कर लेना। अब कभी कभी हड़ताल हो, आना मुश्किल हो, तो वही साइकिल से आना। बड़े खुश होकर कृपा करके दे दिए। किसने? सेठ ने। उस ड्राइवर का तो कल्याण ही हो गया। समझे कि नहीं? ले गया, मरम्मत कर ली, अब किस दिन हड़ताल वगैरह हो गया तो साइकिल चला आ गया, उसका तो कल्याण हो गया। महाराज आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, महाराज आप प्रसन्न होकर अपना भान दोगे, उससे मेरा क्या होगा भाई, और मुसीबत, उसको घास खिलाना पड़ेगा रोज प्रतिदिन, है उसके गोबर कौन उठाएगा, उसको घास कौन खिलाएगा, कहां से खिलाएंगे भाई? क्या सुंदर भाव है इस श्लोक में।
असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्मच वाहनम मोक्ष।
मोक्ष माने बैल, बूढ़ा बैल। मेमने स्तोत्र में भी आता है ना, मोक्ष कटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिन कपालम चेती यत तव वरद तंत्रोपकरणम। पुष्पदंताचार्य जी ने तो वहां सात साधन गिनाए, शंकराचार्य जी ने तंत्र केवल चार साधन गिना दिया है।
हाँ। मम दास्य से किम किमस्ति संभो,
ये संभो आपके पास मुझे देने के लिए क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज है बस, यदि आप प्रसन्न होकर देना चाहो तो मुझे वही चाहिए। क्या बेटा?
मम दास्यसी किम किमस्ति संभो तव पादाम्बुज भक्ति मेव देही। तव पाद अंबुज, आपके चरण कमल की भक्ति दे देना बस, उससे मेरा कल्याण होगा, बाकी और वस्तु से मेरा कल्याण होने वाला
नहीं है और आपके भक्ति में कर रहा हूं, आपके सान्निध्य में मैं आश्रय में रहकर आपकी सेवा कर रहा हूं, तो कोई बौद्ध वस्तु प्राप्त करूंगा इस आशा से भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, एक वस्तु है, आप कृपा करके आपके चरण कमल की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा महाराज। तो भगवान से यही एक वस्तु जीवात्मा को अभिष्ट है, इसके अलावा और कुछ भी अभिष्ट नहीं है और सब अनिष्ट कारक हैं, अभिष्ट तो उनके चरण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, इसका आशय यही है। 88वां श्लोक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यदा कृतांबो निदिशे तु बंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानिते लंघित पद्म संभवस् तदा शिवार्चास तब भावनक्षम हो। हे शिवा, तब अर्चा, आपके पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, आपकी पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि आपके पूजा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसमें वो सामर्थ्यता है वही आपकी अर्चना कर सकता है, आपकी सेवा, आपकी पूजा कर सकता है। जिसमें वो सामर्थ्यता नहीं है तो आपकी क्या पूजा करेगा। हमने सुना है महाराज, भगवान राम ने आपकी खूब अर्चना की है, पूजा की है, वह सामर्थ्यशाली थे इसीलिए आपकी पूजा करने में समर्थ हुए। यदा कृतांबो निधि सेतु बंधन, उनमें वो सामर्थ्यता थी, अंबो निधि, अंबो अप जल, अब भवती थी अंबा, निधि माने समुद्र, अंबो निधि सागर सेतु समुद्र। भगवान ने जब राम ने सेतु बंधन कर सके वो पुरुषार्थ उन्होंने दिखाया, उनमें वो सेतु बंधन करने की सामर्थ्यता थी, तभी उन्होंने आपकी पूजा कर सके, रामेश्वर की पूजा किया है ना। यदा कृता कृता, यदा कृता अंबो निधि सेतु बंधन कृता, तब राम ने पूजा की, तब आपका नाम रामेश्वर हुआ। उनमें वो सामर्थ्यता थी, दूसरा उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने, करस्थलाध कृत पर्वताधिप, पर्वत अधिप पर्वतों का राजा, हिमालय, दोनों अर्थ लग सकता है। और रावण में भी वह सामर्थ्यता थी, वो साधारण व्यक्ति नहीं था रावण, उसने पूरा का पूरा हिमालय को हाथ में उठा लिया था, वो सामर्थ्यता उसमें थी, तभी तो आपने दस दस मस्तक को काटकर आपके चरणों में अर्पण कर दिया। उसमें आपकी पूजा करने की क्षमता योग्यता है, क्योंकि उसमें पर्वत को उठाने की क्षमता है। दूसरा अर्थ है कर तला अध कृत पर्वताधिप, अगस्त ऋषि ने पर्वत को झुका दिया था। पुराण का प्रसंग आप लोगों को पता है ना, देवी भागवत का प्रसंग है। विंध्याचल देवी, विंध्यवासिनी विंध्याचल, देवी भागवत में जब विंध्याचल विंध्यवासिनी का प्रसंग आता है तो उस समय विंध्य पर्वत का प्रसंग आता है। कहते हैं कि ये विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ऊपर उठे जा रहा था, उठे जा रहा था, कि उसके चलते सूर्य को एक दिशा से दूसरे दिशा जाना व्यवधान हो गया था, जा ही नहीं पा रहे थे, रुक गए। इतना बढ़ गया कि सूर्य की गति रुक गई, सारे देवता हैरान हो गए कि अब करें क्या, और किसी का वो न माने पर्वत, क्योंकि झुकना जानता नहीं है वो, बढ़ना जानता है झुकना नहीं जानता। आजकल के हमारे बच्चे जैसे हैं, अकड़ने जानते हैं झुकना नहीं जानते। बात बात पर अकड़ते हैं, झुकना नहीं जानते वो, और झुकना न जानने के कारण ही पारिवारिक कलह है, विनम्रता है ही नहीं, झुकना जानते नहीं। मां के सामने झुकना नहीं जानता, बाप के सामने झुकना नहीं जानता, भाई के सामने झुकना नहीं जानता, झुकने को तो सिखाया ही नहीं ने किसी ने, है? किसी ने भी नहीं सिखाया। बढ़ना जानता है, अकड़ना जानता है। कहता है मैं क्यों झुकूं, बाप से ज्यादा मैं पढ़ा हूं तो मैं क्यों झुकूं, कह देता है आज का बेटा। कहता है कि नहीं बोलो, और सचमुच बाप से ज्यादा पढ़ा हुआ ही है, बोलो दादा के सामने क्यों झुकेगा। दादा अंगूठा छापे और हम मास्टर डिग्री है, मां के सामने क्यों झुकेगा, मां अंगूठा छाप है, दादी के सामने क्यों झुकेगा, दादी अंगूठा छाप है। ज्यादा से ज्यादा उसका बाप ऐसे इंटर किया होगा, उसकी मां इंटरमीडिएट की होगी, बीए एमए की होगी, हम तो डॉक्टर पीएचडी है। एक महात्मा थे ने पीएचडी माने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन का कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, क्या अकड़ दिखाता, फिर भी नगर पालिका कर्मचारी कम अकड़ दिखाता है तुम्हारे सामने, है? कचरा लेने के जब आता है तो क्या अकड़ता है दरवाजे में खड़े होकर, नगर पालिका कर्मचारी, झुकना नहीं जानते। बढ़ रहे हैं, समृद्धि हो रही है, दादा के साथ पुरानी साइकिल थी, बाप के साथ एक गाड़ी थी, बेटे के पास आज तीन तीन गाड़ी है। लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं, महाराज आपका मोबाइल देखा ना, जब मैं अपना मोबाइल दिखाता हूं ना, ये क्या है महाराज, बोले मोबाइल है, कितनी की पता है, आज के जमाने में भी मेरे पास मोबाइल 1000 का सेट है, खाली 1000 की है,
हैं।
आज कहां कहां पहुंच गया दुनिया में। वाह, एक वक्त ने मुझे अमेरिका में एप्पल का आईफोन दिया, आई फोर लेके आए, अब चलाने ही नहीं आता है उसका, फंक्शन ही पता नहीं क्या है वो, है दे दिया, मेरा चेला चला रहा है, अब मैं मुझे चलाना नहीं आता तो करे क्या। कहते हैं कि विंध्याचल बढ़ता ही गया, परिणाम हो गया सूर्य के रास्ते में आ गया, और सूर्य एक दिशा से दूसरे दिशा जा नहीं पाए थे, देवताओं को परेशान हुआ, अब क्या करें, किसी का नहीं मानता है। कहते हैं कि शायद हमारा ना माने तो न माने, गुरु का तो मानता होगा ना, वो अपने गुरु का तो मानेगा। सब लोग जाकर उस विंध्याचल विंध्या पर्वत के गुरु के पास पहुंचे, विंध्य पर्वत के गुरु थे अगस्त ऋषि, जाकर सब कहा कि आपका चेला ऐसा अकड़ हो गया है, इतना बढ़ गया, झुकता ही नहीं है, और सूर्य उधर नहीं जा पा रहे, तो आप कुछ करिए, उसको समझाइए। बोले और कुछ कहेंगे तो वो शायद मेरे सामने भी अकड़ दिखावे, इसलिए कहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय करना चाहिए। तो अगस्त ऋषि खड़ाऊं पहनकर चले गए, पैदल ही खड़ाऊं पहनकर गए, गए तो सामने खड़ा था कौन, चेला विंध्याचल खड़ा था, गुरु को देखा तो बोले गुरुदेव क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम है। बोले बेटा हमको आज दक्षिण की तरफ जाना है, जरूरी काम है, वहां जाने के लिए आए हैं, और तू इस तरह खड़ा है कि हम कैसे जाए, मुझे रास्ता नहीं देगा। बोले आपको तो देना पड़ेगा महाराज, आपको देंगे। तब मैं बूढ़ा हो गया हूं, चढ़ाई करके तो जा नहीं सकता हूं, तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। बोले ठीक है, प्रणाम भी हो जाएगा, रास्ता भी आपको मिल जाएगा, झुक जाते हैं। वो झुक गया, लेट गया, अलाप जाइए। बोले बेटा मुझे फिर आना है, जब तक मैं ना हूं इसी तरह लेटे रहियो। तो अगस्त ऋषि तो गए, गुरुओं में भी बदमाशी होती है बेचारा, देखो अब विंध्य पर्वत को कैसे धोखा दिया उन्होंने। बोले जो आज्ञा गुरुदेव, जरा जल्दी आइयो। हाँ बेटा आएंगे। तो सो गया, लेट गया वो, और अगस्त ऋषि चले गए दक्षिण, आज तक लौट कर नहीं आए, और विंध्य पर्वत आज तक सोया का सोया ही है। उसी पर्वत के ऊपर विंध्यवासिनी निवास करती है, विंध्याचल निवासिनी। तो अष्टभुजा भी वहीं पर है, विंध्याचल भी वहीं पर है, विंध्यवासिनी भी वहीं है। विंध्य पर्वत में निवास करने वाली होने के कारण देवी का नाम विंध्यवासिनी पड़ा। तो अगस्त ऋषि ने शिव की पूजा की, क्योंकि पर्वत को हाथ से नीचे दबा सके वो अपने विंध्य पर्वत को, उसमें वो सामर्थ्यता थी, तो आपकी पूजा करने में भी वो समर्थ हुए। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में आता है ना, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय वशिष्ठ ऋषि ने कुंभोद्भव ऋषि वशिष्ठ कुंभोद्भव कुंभोद्भव ऋषि का ही दूसरा नाम है अगस्त ऋषि। अंगद ऋषि कहो चाहे कुंभद ऋषि कहो एक ही चीज है कुंभोद्भव गौतम ऋषि इन सब ने भगवान शिव की कृतशेखर आया वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखर आया नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यदा कृतांबो निधिसेदुबंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानिते लंगित पद्म संभव पद्म संभव लंघिता ब्रह्मा जी के मर्यादा को भी अतिक्रमण करके भगवान विष्णु पद्म संभव लंघिता यानी जीत लिया किसको भगवान विष्णु ने पद्म संभव वर्मा को जीता किसके आधार पर कल व्याख्या हो गई है सत्य के आधार पर क्योंकि विष्णु ने सत्य बोला ब्रह्मा ने झूठ का आश्रय लिया झूठ का आश्रय लेने के कारण ब्रह्मा छोटे हो गए और श्राप के भागी हो गए दंड के भागी हो गए और सत्य का आश्रय लेने के कारण ही विष्णु ब्रह्मा से बड़े हो गए तो ब्रह्मा के लेवल का लंघन किया भगवान विष्णु ने किसके आधार पर सत्य के आधार पर इसीलिए भगवान विष्णु ने शिव की अर्चना कर सके विष्णु कैसे हरिष्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर तब अपने नेत्र रूपी कमल को अर्पण करके भी भगवान शिव की अर्चना कर सके इसीलिए संसार में विष्णु की प्रतिष्ठा बढ़ गई और विष्णु ने शिव की पूजा की ब्रह्मा ने शिव की पूजा की कहीं इतिहास नहीं है क्योंकि वह सामर्थ्यता थी। तदा शिवार्चास्तव भावन क्षम हो हे शिव आपकी अर्चना करने में तब क्षमता और मैं न तो सेतु बंधन करने में समर्थ हूं न पर्वत को झुकाने में समर्थ हूं न तो ब्रह्मा को भी जीतने की सामर्थ्यता है मुझ में फिर मैं आपकी अर्चना कैसे कर सकता हूं महाराज। बस इतना ही है कि मेरे पास जो एक मन है वो आपको अर्पण कर सकता हूं। चलो आगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाभिवागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।